नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला संबंधों पर चर्चा की। इसके साथ ही ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमरीका में महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण है। विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में एक वर्ष का सेवा विस्तार देने को मंजूरी दे दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय में उनका ये कार्यकाल 10 जून से प्रभावी होगा और ये एक और वर्ष की अवधि के लिए रहेगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती मुद्रास्फीति और कच्चे तेल की कीमतों, रुपए के अवमूल्यन और संभावित कमजोर मॉनसून जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए रेपो दर में वृद्धि सही नहीं होगी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि रिजर्व बैंक बाजार में संकट को दूर करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए अल्पकालिक ब्याज दर और तरलता उपाय अपना सकता है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 7 जून तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। उनकी ये यात्रा विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर के निमंत्रण पर हो रही है। यात्रा के दौरान श्री खनाल नई दिल्ली में डॉ. जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसमें व्यापार, निवेश, कनेक्टिविटी, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। ये दौरा नेपाल और भारत के बीच स्थायी और बहुआयामी द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करेगा। सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस केरल द्वारा किए गए एक पोस्ट का खंडन किया है। इस पोस्ट में राजेश एक्सपोर्ट्स के चालू वित्त वर्ष के आंकड़ों की तुलना भारत के वित्त वर्ष 2026 के आईटी निर्यात डेटा से की गई थी। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये दावा फर्जी है। पत्र सूचना कार्यालय ने लोगों को सलाह दी है कि किसी भी जानकारी या दावे को साझा करने या उस पर भरोसा करने से पहले विश्वसनीय आधिकारिक स्रोतों से उसकी जांच अवश्य करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता के लिए भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल की पहचान दिलाएगा और युवाओं के लिए बड़े अवसर उपलब्ध कराएगा। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। ये हर साल 5 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1973 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत की गई थी। इस दिन का उद्देश्य पृथ्वी पर जीवन को सुरक्षित रखने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। यह दिन पर्यावरण की रक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करता है। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में कल भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाइजिंग को शिकस्त दी थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।